स्वागत है। आज हम साइबर अपराध की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं।
हाँ, और हमारे पास एक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर के तजुर्बे और एनालिसिस पर आधारित कुछ जरूरी जानकारी है।
सही, और इसमें देखिए सबसे बड़ी बात जो निकल कर आती है वो ये कि अपराधी असल में डिवाइस को नहीं बल्कि हम इंसानों को हैक करते हैं।
हम हमारी सोच, हमारा भरोसा, हमारी जल्दबाजी, इन सब का फायदा उठाते हैं।
बिल्कुल सही कहा, और इसी को समझने के लिए आज हम देखेंगे कि ये धोखेबाज लोग खासकर ओटीपी
कैसे चुराते हैं।
हाँ, ओटीपी वाला मामला तो बहुत आम हो गया है।
और कुछ दूसरे डिजिटल खतरे क्या हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है? बेसिकली मकसद है कि हम सब जानकारी से लैस हो।
अच्छा, सोर्स ये भी बताते हैं कि सिर्फ ये कह देना देखो भाई ये मत करो उतना असरदार नहीं होता।
नहीं होता, बिल्कुल नहीं।
जैसे वो हाईवे वाला उदाहरण है ना, सिर्फ संभल कर चलाएं लिखने की बजाय अगर ये बताएं कि विंडशील्ड पर कुछ लगे तो वाइपर क्यों नहीं चलाना चाहिए।
हाँ, कि शीशा धुंधला हो जाएगा, गाड़ी रोकनी पड़ेगी और फिर लूटपाट का खतरा बढ़ सकता है।
एग्जैक्टली, तो मतलब वजह जानना, वो कैसे होता है ये समझना ज्यादा जरूरी है बचाव के लिए।
हाँ बिल्कुल,
ये वैसे ही है जैसे कहते ना हाथी के बारे में मत सोचो तो दिमाग में सबसे पहले हाथी आता है।
सही बात है, तो सिर्फ मना करना काफी नहीं है, हमें समझना होगा कि ये होता कैसे है।
ओटीपी चोरी के कुछ तरीके देखते हैं तो दिखाते हैं कि कैसे हमारे बर्ताव का फायदा उठाया जाता है। एक तरीका है कॉल मर्जिंग।
सुनने में थोड़ा टेक्निकल सा लगता है, इसमें मतलब इंसान को कैसे फंसाते हैं?
देखिए, इसमें अपराधी आपको कॉल करेगा, ठीक है, और बातों में उलझाएगा, शायद कोई बढ़िया ऑफर देगा या कोई मदद का बहाना बनाएगा।
अच्छा,
फिर वो कहेगा अरे एक जरूरी कॉल आ रही है या किसी और को लाइन पर लेना है, जरा कॉल मर्ज कर देंगे प्लीज। और ठीक उसी टाइम एक दूसरी अननोन कॉल आपको आएगी। अब अगर आपने भरोसे में आकर या मदद के लिए कॉल मर्ज कर दी तो
उस दूसरी कॉल पर एक ऑटोमेटेड सिस्टम आपका ओटीपी बोल रहा होता है, और क्योंकि कॉल मर्ज है तो वो अपराधी भी उसे सुन लेता है।
अरे बाप रे, मतलब अनजाने में हमने खुद ही ओटीपी दे दिया, ये तो वाकई बहुत चालाकी वाली बात है
ना। यहाँ आपके भरोसे का या मदद करने की इच्छा का फायदा उठाया गया।
सही कहा, और वो स्क्रीन शेयरिंग एप्स वाला क्या चक्कर है, वो कैसे काम करता है?
वो भी बहुत कॉमन है, अपराधी अक्सर मदद के बहाने फोन करते हैं, जैसे कहेंगे आपकी कोई ऐप नहीं चल रही या आपको रिफंड दिलवाना है।
हाँ हाँ, सुना है ऐसा।
फिर वो आपको क्विक सपोर्ट, एनी डेस्क, टीम व्यूअर, ऐसी कोई ऐप इंस्टॉल करने को कहेंगे।
पर ये ऐप्स तो प्ले स्टोर पर भी होती हैं शायद।
हाँ होती है, और आप अपने आप में बुरी नहीं होती, लेकिन अपराधी उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। वो कहेंगे इसे इंस्टॉल कर लो, हम ठीक कर देंगे, और जैसे ही आपने इंस्टॉल की
तो उनको मेरे फोन का एक्सेस मिल जाता है।
एक्सेस मतलब वो आपके फोन की स्क्रीन लाइव देख सकते हैं। अब आप ओटीपी डालेंगे वो देख लेंगे, आप बैंकिंग ऐप खोलेंगे वो डिटेल्स देख सकते हैं, या आपके डर का या मदद की जरूरत का फायदा उठाया जाता है।
तो मतलब किसी के भी कहने पे कोई ऐप इंस्टॉल करना बहुत रिस्की है।
बिल्कुल, खासकर अगर कोई अनजान व्यक्ति कह रहा है। एक और तरीका है कॉल फॉरवर्डिंग, इसमें वो आपको अनजाने में कोई कोड डायल करवा देते हैं।
कोड? कैसा कोड?
जैसे 62 या 401 से शुरू होने वाला कोई नंबर। वो कहेंगे ये डायल करने से आपका नेटवर्क बूस्ट हो जाएगा या कोई ऑफर मिलेगा।
अच्छा, और उससे होता क्या है?
उससे आपकी इनकमिंग कॉल्स, जिसमें ओटीपी वाली कॉल्स या मैसेज भी हो सकते हैं, वो अपराधी के नंबर पर फॉरवर्ड हो जाती हैं।
बापरे, ये तो पता ही नहीं था।
हाँ, ये सब तरीके हैं। और फिर आते हैं QR कोड वाले स्कैम। आजकल तो हर दुकान, हर जगह QR कोड्स हैं।
हाँ वो तो है, फ्री वाईफाई के लिए, ऑफर्स के लिए।
एग्जैक्टली, फ्री वाईफाई, कोई बड़ा डिस्काउंट, लकी ड्रॉ, ऐसे लालच देकर नकली QR कोड स्कैन करवा लेते हैं।
और स्कैन करने से
या तो कोई खतरनाक ऐप डाउनलोड हो जाती है मैलवेयर टाइप की, या फिर आप किसी नकली वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं, जैसे बैंक की नकली वेबसाइट या शॉपिंग की।
होटल बुकिंग, टिकट बुकिंग में भी तो होता है ऐसा।
बहुत होता है, नकली वेबसाइट बनाकर आपको फंसा लेते हैं, पैसे ले लेते हैं और बुकिंग होती नहीं।
तो इन सब से बचने के लिए कोई टूल या कोई ऐप है, या बस सावधान रहना ही उपाय है?
देखिए, सबसे बड़ा उपाय तो जागरूकता और सावधानी ही है। अनजाने कॉल्स पर मर्ज मत करो, किसी के कहने पर स्क्रीन शेयरिंग ऐप मत डालो, अजीब से कोड डायल मत करो, QR कोड और लिंक्स पर शक करो। हाँ, कुछ ऐप्स हैं जैसे मोबी आर्मर।
वो क्या करती है?
वो ऐप QR कोड या लिंक को स्कैन करके बता सकती है कि वो कितना सेफ है, और वो आपके फोन में जो दूसरी ऐप्स इंस्टॉल्ड हैं उनकी भी सेफ्टी रेटिंग बता सकती है, खासकर लोन ऐप्स या जिनमें चैट वगैरह होती है।
अच्छा, ये तो हुई फोन और पैसों वाली धोखाधड़ी, लेकिन हमारी डिजिटल पहचान का क्या? मतलब सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, वो कितने सेफ हैं?
हाँ, ये भी उतना ही जरूरी है। व्हाट्सएप के लिए प्लीज सब लोग 2-स्टेप वेरिफिकेशन जरूर ऑन करें।
वो 6-डिजिट वाला पिन?
हाँ वही। वो ओटीपी के बाद एक एक्स्ट्रा लेयर है। अगर किसी ने सिम स्वॉप या क्लोन कर भी लिया तो बिना उस पिन के व्हाट्सएप एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। सिर्फ ओटीपी काफी नहीं है।
सही। और फेसबुक?
फेसबुक पर अपनी फ्रेंड लिस्ट की प्राइवेसी सिर्फ मैं, ओनली मी पर सेट कर दे तो अच्छा है, और पब्लिक पोस्ट कम से कम करें।
उससे क्या फायदा?
उससे प्रोफाइल क्लोनिंग मुश्किल हो जाती है। मतलब कोई आपकी फोटो और जानकारी चुरा कर आपकी नकली प्रोफाइल आसानी से नहीं बना पाएगा।
अच्छा, और अगर इंस्टाग्राम हैक हो जाए तो? ऐसा भी होता है?
हाँ होता है। उसके लिए instagram.com/hacked पर जाकर अकाउंट रिकवर करने की कोशिश कर सकते हैं। वहाँ स्टेप्स दिए होते हैं।
ये सब तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए फ्रॉड हो ही गया तो अक्सर ये सुनने में आता है कि पैसा वापस नहीं मिलता, क्यों?
पैसा वापस मिलना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि अपराधी बहुत शातिर तरीके से काम करते हैं। वो फर्जी सिम, फर्जी बैंक अकाउंट इस्तेमाल करते हैं
ताकि पकड़े न जाएं।
हाँ, और जैसे ही पैसा उनके अकाउंट में आता है वो उसे तुरंत मतलब मिनटों में कई लेयर्स में घुमा देते हैं। अलग अलग अकाउंट्स में भेजेंगे, या क्रिप्टो खरीद लेंगे, या गिफ्ट कार्ड बना लेंगे,
या विदेश भेज देंगे।
बिल्कुल, सब कुछ बहुत तेजी से होता है। इसीलिए कहते हैं कि फ्रॉड होने के तुरंत बाद वो गोल्डन आवर बहुत जरूरी है। जितनी जल्दी हो सके 1930 जो साइबर क्राइम हेल्पलाइन है उस पर कॉल करके रिपोर्ट करना चाहिए,
ताकि वो पहला अकाउंट फ्रीज हो सके।
हाँ, ताकि शायद पैसे को आगे जाने से रोका जा सके, चांस बढ़ जाते हैं।
तो कुल मिलाकर बात वहीं आ जाती है कि सावधान रहना और ये समझना कि धोखेबाज कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, यही सबसे बड़ा हथियार है।
बिल्कुल। सिर्फ ये रटना काफी नहीं कि क्या नहीं करना, ये समझना जरूरी है कि वो कैसे करते हैं।
सही।
और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को, क्या हम में से कोई भी इस डिजिटल दुनिया में पूरी तरह सेफ है?
मुश्किल सवाल है।
एक वेबसाइट है haveibeenpwned.com, आप जाके देख सकते हैं। वो बताती है कि आपका कितना डेटा, ईमेल, पासवर्ड, फोन नंबर पहले ही अलग अलग डेटा लीक्स में पब्लिक हो चुका है।
अरे,
और अपराधी अक्सर इसी लीक हुए डेटा का इस्तेमाल करते हैं हमें टारगेट करने के लिए। तो शायद पूरी सुरक्षा जैसी कोई चीज है ही नहीं। ये एक लगातार चलने वाली लड़ाई है, कोई मंजिल नहीं। हमें बस सीखते रहना है और सावधान रहना है।